اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, آئی وانٹ ٹو ٹیک ریونج, آپ نے مجھے پوک کیا, یعنی میں ہرٹ ہوا ہوں, آپ نے مجھے اتنی زور سے جو ہے وہ چٹکی کاٹی ہے, تو میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے کہیں کہ میں ریونج لینا چاہتا ہوں. اب امیجن کریں, سمجھے آپ کے, کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے, سمجھے آپ کے شوہر نے یا آپ جو بچیاں بیٹھی ہیں, آپ کے ابا نے آپ کو یہاں ایسے کیا مذاق سے, آپ کے ابا میں بدلہ لینا چاہتی ہوں. اوہو, کیا سنیں گے آگے سے شوہر, اگر شوہر کو آپ نے کہا تو کیا سنیں گے آگے سے؟ بڑی بہن, شوہر بھی چھوڑ دیں اور ابا بھی چھوڑ دیں, بڑی بہن کو آپ نے کیا اس طرح سے, بڑی بہن کہے گی اچھا تم نے یہ مجھے کیا, میں بدلہ لوں گی تم سے. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کہا اوکے, ٹیک یور ریونج, استبر, لے لو. اس شخص, اس نوجوان نے کہا انا علیک قمیصا ولیس علی قمیص, آپ نے تو شرٹ پہنی ہوئی ہے, میں نے تو شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی, مطلب جب آپ نے مجھے مارا تھا, چٹکی کاٹی تھی, تو مجھے زیادہ زور سے لگی تھی. کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے اپنا کرتا ریز کر لیا اور آپ نے کہا اس صبر, لے لو بدلہ. وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کر کے کس کر لیا, اور اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بس یہی کرنا چاہتا تھا اور میں آپ کو اسی طرح سے پیار کرنا چاہتا تھا, انما اردت یا رسول اللہ, میں بس یہ چاہتا تھا. لیکن آپ کو اللہ کے رسول کا مقام کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اکڑ نہیں, کوئی ایگو نہیں, کوئی غصہ نہیں. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان کے پاس تو اتھارٹی تھی, وہ اللہ کے رسول تھے, باقی سارے رشتے ایک طرف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عدل ہے یہ, جس نے دنیا میں اگر کسی نے آپ کی چٹکی کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف ہوئی دنیا میں, بہتر ہے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیجئے. قبر میں بہت بھاری ہو جائے گا, قبر میں بہت مشکل ہو جائے گا. یہ چیز آپ کو اللہ کے رسول کی پرسنالٹی میں پرفیکٹ نظر آتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس ہی بتاتے ہیں کہ میں ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ کے پاس آتی تھی تو آپ اس کو کھاتے تھے, چکھتے تھے, پیتے تھے, اور پھر اپنے رائٹ ہینڈ پر اس کو گھما دیتے تھے تاکہ باقی لوگ اس کو چکھ لیں. تو اب رائٹ سائڈ پر عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے اور لیفٹ پر ابو بکر اور عمر بیٹھے تھے. آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا, آپ نے دودھ پیا, اس کے بعد یہ نہیں, اچھا ابو بکر اور عمر سینئر صحابہ, عمر میں بڑے, عبداللہ ابن عباس کی عمر تھی 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ رائٹ سائڈ پر سنت تھی دینا, آپ چاہ رہے تھے کہ آپ پہلے ابو بکر عمر کو دے دیں, تو آپ نے یہ نہیں, بچہ ہے اس سے کون پوچھے, آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ابو بکر اور عمر کو دودھ یہ والا دے دوں. عبداللہ ابن عباس یہ وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کی دعا تھی ان کو کہ اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا کر, دین کا فہم عطا کر. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سوچا کہ اگر وہاں سے پیالہ ہوتا ہوا میرے پاس آئے گا تو برکت کم ہو جائے گی اللہ کے رسول کی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں اس برکت سے میں فائدہ اٹھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں ڈانٹا, دھوبا, بچوں کو کتنی زبان لگ گئی آج کل, کتنا بولتے ہیں, کتنا ماں بڑوں کے سامنے زبان چلاتے ہیں, کچھ نہیں. آپ نے پیالہ ان کو پکڑایا اور عبداللہ ابن عباس نے پیالہ پی کے, اس کے بعد حضرت عمر کو, اور پھر حضرت ابو بکر کے پاس پیالہ آ گیا. یہ چیز آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کے رسول کی پرسنالٹی میں ملتی ہے. اگر آپ کو امام عادل بننا ہے اپنے گھر میں, اپنے کردار میں یہ خوبصورتی لے کر آئیے, کسی کا حق مت ماریں. شرح سنہ میں امام البغوی لکھتے ہیں اکثر قریش کے سردار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے پاس سے تھرڈ کلاس لوگوں کو ہٹا دیں. ہم بولتے ہیں نا دیز تھرڈ کلاس پیپل, عبداللہ ابن مسعود کو ہٹا دیجئے, حضرت بلال ابن رباح کو ہٹا دیجئے, جب یہ نہیں ہوں گے تب ہم یہاں پر آ کے آپ کی بات سنیں گے اور آپ سے ہم اس وقت کمیونیکیشن کریں گے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے, اور اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے. قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارا کیا خیال ہے اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ اللہ نے مجھے عدل کے لیے بھیجا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یقیناً اللہ لوگوں کو نوازتا نہیں یہاں تک کہ ان میں موجود کمزور انسان کو اس کا رائٹ نہ دے دیا جائے. آپ کے گھر میں جو کمزور ہے, آپ کے معاشرے میں جو کمزور ہے, اس کا رائٹ جب تک ادا ہوتا رہے گا اللہ نوازتا رہے گا. اور جب اللہ کی جو نوازش ہے وہ کم ہو جائے, اللہ کی عطا کم ہو جائے, نعمتیں برسنا کم ہو جائیں, اس کا مطلب ہے کسی کمزور کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. आंखें खोलने वाली अहादीस हैं। इसी तरह से मालूम आपको होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में यह अदल की कैफियत शुरू से थी। हिलफुल फदूल आप लोग जानते हैं, जो नबूवत से भी पहले एक पैक्ट हुआ था, लीग ऑफ द पैक्ट हुआ था कुरैश के कबाइल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द यंगेस्ट, जिसमें आपको शामिल किया गया था, इसलिए कि आप माशरे में कांस्टेंट अदल कायम करने वाले थे। इसी तरह एक मरतबा वाकया आता है हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन का। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन 85 ईयर्स के थे, खलीफा थे, कि उन्होंने किसी बच्चे का प्यार में कान मरोड़ा। कान बच्चों का आप मरोड़ते हैं, जैसे हम बच्चों की गालें पकड़ के, चीख पकड़ के ट्विस्ट कर देते हैं। किसी लड़के का उन्होंने कान ऐसे ही ट्विस्ट किया। उस पर लड़के ने उनसे कहा कि ये आपने मुझे हर्ट किया है बहुत ज्यादा। बस उन्होंने, लड़के ने सिर्फ इतना बोला बच्चे ने। अब इमेजिन करें, यह 10 साल का बच्चा था। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन एक बुजुर्ग इंसान थे, 85 ईयर ओल्ड। जब इस बच्चे ने यह कहा कि आपने मुझे हर्ट किया है, तो फौरन हजरत उस्मान ने कहा कि अच्छा तुम बदला ले लो। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहा, बस मैं बता रहा था मुझे हर्ट हुआ। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन ने इंसिस्ट किया कि नहीं तुम मेरा कान इसी तरह से ट्विस्ट करो। उस बच्चे ने जब कान ट्विस्ट किया तो हजरत उस्मान ने कहा पिंच हार्डर, फ़इन्ना क़िसासुद दुनिया अहवनु मिन क़िसासिल आखिरा। दुनिया की सजा बेहतर है, दुनिया की सख्ती बेहतर है, बजाय इसके कि मुझे आखिरत में ये सख्ती जो है बर्दाश्त करनी पड़े। यह आपको माइंडसेट नजर आ रहा है अदल का। तो अगर आप वालिदैन की पोजीशन पर हैं, माँ हैं, अपनी औलाद में अदल कीजिए। आप औरत हैं, आप बीवी हैं, आप अपने घर के ऊपर इमाम हैं अपने शौहर के पीछे। अल्लाह ने उसको आपके साथ जो है वो हुक्मरान एक तरह से एक कवाम की शक्ल में रखा है। बाकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है कि आप अपने शौहर के घर में एक इमाम के तौर पर कैसे चीजों को संभालते हैं। उस्ताद अपने शागिर्दों पर इमाम होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज पर जो है वो इमाम होता है। तो कॉन्स्टेंटली आप जिस मखलूक के ऊपर अथॉरिटी रखती हैं, आप उसके ऊपर इमाम की पोजिशन में हैं। आप देखें आप उसके कितने हकूक अदा कर रहे हैं, कितने राइट्स अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की मुसलमानों को कि अपने बच्चों के दरमियान में अदल करो। आपकी हदीस में आता है इत्तकुल्लाह, तकवा करो अल्लाह का, वादिलु बैना औलादिकुम, अपनी औलाद में अदल करो। एक वाकया आता है नुमान बिन बशीर से, वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे एक मरतबा तोहफा देने का सोचा, दिया भी नहीं, तोहफा देने का सोचा। नुमान बिन बशीर ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं अपने इस एक बेटे को यह तोहफा देना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने अपने बाकी बेटों को भी, बाकी औलाद को भी यही तोहफा देने का फैसला किया है? उन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अशहदु अलज़्ज़ूर, मैं इस फॉल्सहुड पर तुम्हारा गवाह नहीं बन सकता। आप उठे और वहां से चले गए। यानी हम में से जितने भी वालिदैन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद को ये बात मेंशन कर दी कि यह जुल्म है कि तुम एक महंगा तोहफा अपने एक बेटे या एक बेटी को दे दो और बाकियों को मत दो। अगर आपसे यह ज्यादती होती है या हुई है तो प्लीज उसको कंपेंसेट कीजिए। और अगर आपके वालिदैन से हुई है और आप इस पोजीशन में हैं कि आपको ज्यादा मिला और आपके बाकी बहन भाइयों को नहीं मिला, दिल बड़ा कीजिए, आला जरफी दिखाइए और अपनी उस चीज को सब बहन भाइयों में डिवाइड कर लीजिए। यह आजिजी है, ये इंसान के अंदर झुकाव लेकर आती है। जिस दरख्त पर जितना फल होता है वो उतना झुका होता है, जिस दिल में जितना तकवा होता है वो लोगों के सामने गिविंग कैपेसिटी में होता है, उसका देने वाला हाथ होता है, लेने वाला हाथ नहीं होता। और जिसका देने वाला हाथ होता है वो इमोशनली भी एनरिच्ड होता है। आज हम सब मेजॉरिटी इमोशनली बैंकरप्ट है, इमोशनल बैंकरप्सी हम में बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हम अपने जैसे इंसानों पर डिपेंड करते हैं। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे टेढ़ी आंखों से देख लिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझसे गुस्से में बात की, अब बस अब ये सब चीजें होंगी और दूसरे लोगों के हाथ में मेरे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल होगा, तो हम आए दिन परेशान रहते हैं, आए दिन रोते रहते हैं, आए दिन हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। और किसी एक के साथ भी हमारी ये सिचुएशन आती है तो हम अगले चार दिन तक काम करने के काबिल नहीं रहते। हम कहते हैं बस मुझसे बात ना करे कोई भी, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। जब औलाद की बात माँ बाप नहीं मानते, औलाद का भी इतना बड़ा मुंह बन जाता है। कितना बड़ा, अभी दूसरे हाथ में माइक है वरना बहुत बड़ा बनाकर दिखाती। और फिर अम्मा पूछती रहे बेटा क्या हो गया, कुछ नहीं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, छोड़ दें खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ये मत कीजिए, अल्लाह ने आपको एक बड़े मकसद से पैदा किया है। अपने अंदर आजजी लेकर आइए, झुकाव लेकर आइए और देने वाली पोजीशन में आ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को भी जुल्म करार दिया है अहादीस में कि आप अपने बेटों को अपनी बेटियों पर प्रेफरेंस दें। अल्लाह ने आपको औलाद दी, आपका बेटा और आपकी बेटी आपके लिए बराबर है। जहां अल्लाह ने हिस्से अलग रखे हैं विरासत के मामले में, वहां कोई नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा, लेकिन अपने रोजमर्रा के मामलात में, अपने रोजमर्रा की डीलिंग में अपने बेटों को अपनी बेटियों के ऊपर प्रेफरेंस देंगे, इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसग्रेशन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो दीन दे के गए हैं जहां जानवरों तक के हुकूक हैं। जानवर के साथ भी जुल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि आपको इंसाफ करना है। ये वो दीन है जिसमें एक औरत जहन्नुम में चली गई इसलिए कि उसने बिल्ली को कैद करके भूखा मार दिया। ये वो दीन है जहां एक आदमी जन्नत में चला गया इसलिए कि उसने भूखे प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। तो यहां तो अदल कॉन्स्टेंट है, हर स्टेप के ऊपर है। सिर्फ आपको और मुझे बाअमल मुसलमान बनने की जरूरत है। हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर के बारे में आपने मशहूर सुना है कि हजरत उमर का दौर एक बहुत ही इंसाफ वाला दौर था। हजरत उमर रोया करते थे। एक तो आपने सुना है ना कि हजरत उमर का एक कॉल आता है, वो कहते थे कि अगर दज्जला के ऊपर कोई बकरी जो है वो मर जाएगी तो उसका जवाब मैं दूंगा। हजरत उमर इराक के गधों के बारे में भी कहा करते थे कि इराक का वो गधा जिस पर मालिक उसके बोझ, उसकी ताकत से बढ़कर बोझ डालता है, ये सोचकर रोते थे कि कयामत के दिन इसका सवाल भी मुझसे किया जाएगा। कुर्सी लेना आसान नहीं होता, पोजीशन मिलना आसान नहीं होता, इमाम बनना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्रीज के पीछे सब भाग रहे होते हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो इंसान कहे मुझे ये जिम्मेदारी मत दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। लीडरशिप पोजीशन पर आना बहुत कुर्बानी मांगता है, बहुत सेक्रीफाइस मांगता है, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनल भी बहुत तरह से। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह अगर आप मुझे किसी लीडरशिप पोजीशन पर लाए, इमाम बनाए, तो मुझे एहसान के साथ उस पोजीशन का हक अदा करने वाला बनाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पोजीशन को इमाम आदिल की सबसे टॉप पर रखा है। जब इमाम आदिल होगा, हर कोई अपनी पोजीशन अदा करेगा, तो ऑटोमेटिकली माशरे में इस्लाह, इंसाफ और जस्टिस प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे का हक देना शुरू कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईसा वापस आएंगे, ईसा अलैहि सलाम के लिए क्या कहा था, रसूल बन के आएंगे, नबी बन के आएंगे या एक जस्ट रूलर बन के आएंगे? एक जस्ट रूलर बन के आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईसा वापस आएंगे तो सांप भी इंसान को नहीं काटेगा, इसलिए कि वो इंसान के साथ ज्यादती हो जाएगी। आपने फरमाया वुल्फ जो भेड़े हैं उनको नहीं खाएगा, इसलिए कि इंसाफ होगा। जब आदिल हुक्मरान होता है, इट फिल्टर्स डाउन द होल इम्पैक्ट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये मिसाल इसलिए दी ताकि आज जो हुक्मरान बने, आज जो पोजीशन पर आए, आज जो अथॉरिटी पर आए, वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। आप में से जो अपने घर का बड़ा है, बड़ी बहन, बड़ी बहू, बड़ी बीवी, जो बड़ा है, बड़े खवातीन से नाराज हो जाती हैं, कहती हैं आप एक तो रिकॉर्डिंग में ऐसी बात बोलती हैं, कभी हमारे शोहर और बच्चे सुन रहे होते हैं, बेटे सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं देखा बड़ी बीवी, चलो तुम्हें बड़ी बीवी बना देते हैं। अल्लाह ताला हम अगर मर्दों में अदल की कैपेसिटी हो तो यकीन जाने ये चीज मुश्किल नहीं है। हमारे मर्दों से तो एक बीवी नहीं संभाली जाती है, एक के साथ अदल नहीं होता, दो में अदल कैसे करेंगे? बेचारे खुद जो हैं वो कोलू का बैल बन जाएंगे और उनको समझ नहीं आएगी कि सुबह शाम कैसे गुजारें। बात इतनी सी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम के दौर को उस वक्त 1450 साल पहले इसलिए बताया ताकि ये बता दिया जाए कि ये एक टॉप पोजीशन की रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर टॉप पोजीशन सही होती है तो ऑटोमेटिकली माशरे के अंदर इस्लाह होनी शुरू हो जाती है। अद्दी इब्नु हातिम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो वक्त होगा, यानी जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे, कि एक औरत इराक से जाएगी तन्हा अपने ऊंट पर और यमन से इराक के इस हिस्से में सफर करेगी और उसको अल्लाह के अलावा किसी चीज का खौफ नहीं होगा। अद्दी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा क्या उसको जानवरों और डाकुओं का खौफ भी नहीं होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसलिए कि हुक्मरान आदिल हो तो इंसान नीचे की तमाम मखलूकात को इंसाफ करता हुआ पाता है। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में देखता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन, और उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اتنا عدل تھا کہ چرواہے بے فکر ہوتے تھے کہ بھیڑیا آ کے ہماری شیپ کو نہیں کھائے گا. یہ عدل مسلمان حکومتیں آبزرو کر چکی ہیں, مسلمان امت نے اس عدل کو آبزرو کیا ہے, اس لیے کہ امام عادل ہو تو آٹومیٹیکلی ہر چیز پراپرلی فکسڈ ہو جاتی ہے. جب امام عادل ہو اکنامک جسٹس ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا پولیٹیکل جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا رائٹس جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو سوچیں سمجھیں, آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں اس معاشرے کا, اور سوچ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو اس امت کو بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے. آپ کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا, عورت بنایا. عورت ملٹی ڈائمینشنز میں سوچ سکتی ہے, عورت ملٹی ڈائمینشنز میں کام کر سکتی ہے. اپنے آپ کو ویسٹ مت کیجئے, اپنے آپ کو بہترین امام بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آئیے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے حضرت انس بن مالک سے, آپ نے فرمایا کہ انسان جو اصل مسلمان ہوتا ہے مومن, وہ اپنے صدقے کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا, ناانصافی نہیں کرتا. اس لیے کہ صدقے کے معاملے میں ناانصافی کرنا از ایکولنٹ کہ جیسے اس نے صدقہ کیا ہی نہیں. اور کیا مطلب ہے صدقے میں ناانصافی کرنا؟ فیورٹزم کرنا صدقہ کرتے ہوئے, کہ میں تو بس اس مدرسے کو دوں گی, میں صرف اس آرگنائزیشن کو دوں گی, میں صرف اس این جی او کو دوں گی, میں صرف اس ماسی کو دوں گی. صرف اپنی ماسیوں کو دیتے رہنا تاکہ پھر وہ کل چھٹی نہ کریں, دس از فیورٹزم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ یہ صدقے میں ظلم ہے, اور صدقے کا ظلم, صدقے میں فیورٹزم از ایکولنٹ کہ جیسے آپ نے صدقہ دیا ہی نہیں, یعنی یہ قبول نہیں ہوتا. تو اس چیز کو اپنے اندر سے بہتر طریقے پر لانے کی کوشش کریں. حضرت عمر کی سیرت میں سے میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گی, پھر ہم انشاءاللہ اگلی صفت پر چلتے ہیں. حضرت عمر کی سیرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہترین ہے. اگر آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو ضرور پڑھیے. ہی واز دا مین آف جسٹس. آپ کو نظر آئے گی ان کی زندگی میں کئی مثالیں. ایک مرتبہ ایک پرشین ایمپرر تھا جس کا نام تھا ہرمزان. ہرمزان جو تھا یہ پرشیا کا بادشاہ تھا اس وقت کا, جب اس نے فیصلہ کیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے گا مدینہ. اور پرشین امپائرز کے لیے اس وقت بڑا یہ چیز مشہور تھی کہ بہت پومپس ہوتے ہیں, ایک تو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, اور محل بھی عام پتھر کے نہیں بناتے تھے, محل بھی بناتے تھے وائٹ ماربل کے. آپ نے نام سنا ہوگا نا بیت الکسرا کا محل. کسرا کا محل کس کے پاس تھا؟ پرشین امپائر کے پاس ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ پروفیسی کر کے گئے تھے اپنے وقت میں کہ مسلمان جو ہیں البیت الابیت کو کانکر کر لیں گے. البیت الابیت وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی. البیت الابیت کسرا کا محل, اس کا دوسرا نام ہے البیت الابیت. یعنی آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلم حکومت عربین پیننسولا سے باہر نکلے گی, اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے جو کسرا کے محل ہیں اس کو فتح کر لیں گے. تو یہ ہرمزان جو تھا, ہرمزان نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ آیا, اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے خلیفہ کہاں ہیں. لوگوں نے کہا دو ہی جگہ پر ہو سکتے ہیں, یا مسجد میں ہوں گے یا گھر پر ہوں گے. تو کچھ لوگ اس کو ہرمزان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر گئے. مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے, تو انہوں نے کہا یقیناً اپنے گھر میں ہوں گے. وہ ان کو, اس بادشاہ کو, حضرت عمر کے گھر میں لے گئے. جب گھر میں گئے تو سب سے پہلے, اب آپ امیجن کریں, بادشاہ کنگ, پرشین کنگ, اور محل میں رہنے والا, اور وہ بھی وائٹ ماربل کسرا کے محل میں رہنے والا, بیت الابیت میں رہنے والا کنگ آ رہا ہے. ان کے کپڑے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا لگژریس لائف سٹائل آپ کے ذہن میں, وکٹورین سٹائل فرنیچر سب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. جب اس نے حضرت عمر کا گھر دیکھا تو شاکڈ ہو گیا, اور جب حضرت عمر کو اس نے دور دیکھا تو ایک کھلے میدان میں ایک درخت کے سائے میں زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 فٹ سے بھی زیادہ لمبے تھے, ٹال, ہینڈسم اور براڈ شولڈرز, ایک پرسنالٹی تھی حضرت عمر کی. کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو حضرت عمر دور درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے, کوئی چٹائی کچھ بھی نہیں تھی, اور تکیا نہیں تھا سر کے نیچے, جوتوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا, اپنے جوتے اور جوتوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا. اس سے زیادہ ہمبل پکچر کوئی آ سکتے ہیں؟ اور کہتا ہے کہ آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. ہنسی آئے نا آپ کو آج کے دور میں سوچ کے کہ حکمران ہو, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, اور آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. और कहता है कि उमर की तलवार दरख्त से नीचे लटक रही थी, मतलब उन्होंने दीवार तलवार अपनी जो उसके लेदर उसमें केस में थी उसको दरख्त से ही हैंग किया हुआ था, यानी कोई भी आए उन्हीं की तलवार उठाए उमर की और उमर को स्टैप करके चला जाए। लेकिन उमर को कोई खौफ नहीं था, कोई बॉडी गार्ड नहीं थे। याद रखें, हम जैसे भी छोटे छोटे मामूली इंसान, हमें भी बड़ी अपनी जाने प्यारी होती हैं, हमें कोई किडनैप ना कर ले, हमारे बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले, कोई हमें आकर जो है वो टारगेट किलिंग में मार ना दे। जहां मौत आनी है वहां मौत आएगी। इतना ज्यादा जिंदगी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड को बॉडीगार्ड क्यों कहते हैं? सोल गार्ड होता है वो। बॉडीगार्ड सिर्फ आपके इस गोश्त पोस्ट के जिस्म को बचा सकता है, लेकिन अगर मलकुल मौत आ गया कहीं पे, तब बॉडीगार्ड का फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। हजरत उमर के पास कोई बॉडीगार्ड नहीं था। हेड ऑफ द स्टेट, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड एट दिस टाइम, इसलिए कि मुसलमान इस मौके पर आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर चुके थे। और हुरमुजान कहता है कि मैंने जब उमर को इस पोजिशन में देखा तो जो इनके साथ लोग थे इस बादशाह के साथ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसने, बादशाह ने शायरी की और बादशाह ने शेर क्या पढ़ा, हकमता फा अदलता फा अनिमता फा निमता। आपने रूल किया और अदल के साथ रूल किया और हर एक को उसका रूल दे दिया। आप सिक्योर हैं और सोने के काबिल हैं और कोई आपको बॉदर भी नहीं कर रहा, यानी आपको किसी का खौफ नहीं है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? जो मैंने आखिर में यह वाकया सुनाया, इसका मकसद क्या है? इंसाफ वाली पर्सनैलिटी अपनी बना लीजिए। माँ बाप को माँ बाप का हक दीजिए, शौहर को शौहर का हक दीजिए, बहन भाइयों को बहन भाइयों का हक दीजिए, औलाद को औलाद का हक दीजिए। सबसे पहले अल्लाह को अल्लाह का हक दीजिए, आपको दुनिया में भी सुकून नसीब होगा। हर कोई सुकून की तलाश में है ना, हर कोई स्ट्रेस लेवल में इस वक्त जो है वो आया हुआ है। हर तीसरा चौथा बच्चा, हर तीसरी चौथी औरत एंटी डिप्रेसेंट खा रही है, और एंटी डिप्रेसेंट खाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूं। आपकी विल पावर, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाएगा वक्त के साथ साथ। अपने आप को हुकूक देने वाली पोजिशन में लेकर आइए, अल्लाह का हक दीजिए, और जिस पोजीशन में अल्लाह ने आपको अथॉरिटी दी है इंसानों का हक दीजिए। आखिरत में अल्लाह के अर्श का साया तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको इंशाल्लाह दुनिया में भी सुकून मिल जाएगा। अगली सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली कैटेगरी जो बताई, जो अल्लाह के अर्श के साये में होगी, वो है शाबुन नशा बी इबादतिल्ला। एक नौजवान, बहुत प्यारे अल्फाज हैं उर्दू में, इसका आप कभी भी हक अदा नहीं कर पाते हैं जब इसका तर्जुमा होता है। शाबुन नशा बी इबादतिल्ला, एक नौजवान जो अल्लाह की इबादत से, इबादत करते हुए ग्रो होता है, नरिश होता है, एनर्जाइज होता है, यानी एक ऐसा नौजवान की तस्वीर है जो कांस्टेंट अल्लाह की इबादत की तरफ भागता है। और जब हम अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑफरिंग योर नमाज 5 वक्त के। अल्लाह की इबादत मोमिन 24/7 करते हैं। मैं क्या पहनूं, यह भी अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। मैं क्या बोलूं, यह भी अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। मैं कैसे अपने माँ बाप को डील करूं, कैसे अपने बहन भाइयों और शोहर को डील करूं, यह भी मेरी इबादत का हिस्सा है। जाए नमाज की चौड़ाई तक इबादत खत्म मत कर लिया करें। पढ़ तो ली थी नमाज, क्यों बार बार कहती रहती है मुझे अम्मा? कहां हो गया आपकी इबादत? एक नौजवान जो अल्लाह की इबादत से नरिश होता है, एनर्जाइज होता है, उसका 24/7 मामला इबादत का, बंदगी का होता है। आप में से जिन लोगों ने सूरत यासीन सुनी होगी, वहां हमने अपनी एक थीम रखी थी और थीम यही थी, आई एम सॉरी, प्लीज अगर आप बुरा ना माने, ये सारी आवाजें ना रिकॉर्डिंग में कॉन्स्टेंटली आते हैं, प्लीज मैं नहीं परेशान हो रही, लेकिन वो फिर रिकॉर्डिंग में आता है ना, वो फिर निकल नहीं पाती बच्चे की आवाज, जैसे हम बच्चों को नहीं निकाल पाते ना। जज़ाकअल्लाह। अब तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इबादत इंसान कांस्टेंट करता है, 24/7 करता है। तो जो थीम हमने रखी थी वो रखी थी कि आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की क्लास में आके बैठते हैं। सो हम आबिद हैं, अब्द नहीं बने अभी। आबिद इज द वर्शिपर, अब्द इज द स्लेव, स्लेव इज 24/7 स्लेव। जब मैं नमाज नहीं पढ़ रही, मैं उस वक्त भी अब्द हूं, आबिद नहीं हूं उस वक्त मैं। जब मैं रोजा नहीं रखे हुई, उस वक्त मैं आबिद नहीं हूं, आई एम नॉट द वर्शिपर एट दैट टाइम, बट आई एम स्टिल एन अब्द। अब तो हूं अल्लाह की, उससे रस्सी से जान तो नहीं छुड़ा सकती हूं। तो आपकी जिंदगी की हर चॉइस जब इबादत के अंडर आ जाएगी तब आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। शाबु नशा मिन इबादत इल्ला। इब्ने हजर के मुताबिक अगेन ये सारी कैटेगरीज सिर्फ मर्दों के मुतालिक नहीं हैं, ये औरतों और मर्दों दोनों को एड्रेस करती हैं। तो वो नौजवान बच्ची या वो नौजवान बच्चा जो या नौजवान यूथ जो अल्लाह की इबादत से एनर्जाइज होता है वो इस कैटेगरी में आता है। और अल्लाह ताला ने इस दीन इस्लाम में यूथ को बहुत अहमियत दी है, अल्लाह की नजर में नौजवान की बहुत अहमियत है। इसलिए कि जो अल्लाह ने मुझे और आपको एक 60-70 साल का जिंदगी का लाइफ स्पैन दिया है, इस लाइफ स्पैन में सबसे बेस्ट पार्ट आपकी जिंदगी का ये शाब वाला होता है। सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सबको आती है, आप सब लोग पढ़ते हैं फ्राइडे के फ्राइडे, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ते होंगे। अगर पूरी सूरह कहफ नहीं पढ़ते तो कम से कम शुरू की 10 आयतें तो जरूर पढ़ा कीजिए, ऑलमोस्ट इसको अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए कि मैंने शुरू की 10 आयतें जरूर पढ़नी है। सूरह कहफ में आता है इन्ना हुम फितयतुन आमनू बि रब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो सिर्फ नौजवानों का एक ग्रुप था। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ की कोई नेशनैलिटी कुरान में नहीं बताई, किस इलाके के लोग थे, अल्लाह ने यह नहीं बताया घर कैसा था उनका, रिवायात बताती हैं कि बड़ी इलीट क्लास के बच्चे थे, अल्लाह ने यह नहीं बताया कॉम्प्लेक्शन कितना फेयर था, बाल किस कलर के थे, हाइट कैसी थी, किस स्कूल की डिग्री थी उनके पास, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, जीपी क्या था उनका, सेट स्कोर क्या था उनका, कैम्ब्रिज के अंदर कितने स्टार्स आए थे, कुछ कह रहे हैं अल्लाह ताला इन्नहुम फितयतुन फआमनु बिरब्बिहिम। बस एक नौजवानों का ग्रुप था जो अपने रब पर ईमान ले आया। अल्लाह की नजर में इस जवानी की, इस यूथ की बहुत अहमियत है और अल्लाह की नजर में इस यूथ की इबादत की भी बहुत अहमियत है। इसलिए कि इंसान की टेम्पटेशंस, इंसान की डिजायर्स अपने क्लाइमेक्स पर होती हैं यूथ के अंदर, और जो अपनी टेम्पटेशंस को अल्लाह की मोहब्बत में कंट्रोल करके लगाम डाल के रखता है अल्लाह को उस पर बहुत प्यार आता है, अल्लाह के लिए वो महबूब हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर अपने रसूल के जरिए जो लफ्ज इस्तेमाल करवाया वो करवाया शाबुन नशा, यंग पर्सन दैट इज नरिश एंड एनर्जाइज्ड बाय द इबादत ऑफ अल्लाह। अब इसका मतलब क्या है, उलमा हमेशा कुरान में से जब कोई बात आती है ना तो वो उसका एक मफहूमुल मुखालिफा निकालते हैं, यानी उसके रिवर्स मीनिंग्स निकालते हैं। जब अल्लाह को वो नौजवान पसंद है या अल्लाह अपने अर्श के साए में उस नौजवान को जगह देगा जो कॉन्स्टेंटली अल्लाह की इबादत की तरफ भागता है, जो आबिद के साथ साथ अब्द बनने की कोशिश करता है। मैं सिर्फ अम्मा को अपनी नमाज पढ़ते हुए नजर ना आऊं, बल्कि जब मैं स्कूल यूनिवर्सिटी में हूं जहां अम्मा भी नहीं और अब्बा भी नहीं, तब भी मैं अल्लाह की बंदी बन के रहूं। माँ बाप सारी उम्र सर पर नहीं रहते, माँ बाप कब तक सर पर हैं ना माँ बाप को पता है ना औलादों को पता है। माँ बाप इसकी फिक्र करें कि अपने दिल, अपने और अपनी औलाद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जगा दें, इसलिए कि हमें नहीं पता हमें कितना मौका मिलता है। और औलाद इसकी फिक्र करें कि माँ बाप के खौफ से दीन पर नहीं आना, अल्लाह की मोहब्बत में दीन पर आना है। मैं कहीं भी हूं, माँ बाप ना भी हों, अल्लाह तो मेरे साथ होता है। जब भी कहा जाता है गुनाह करना है तो वहां जाइए जहां अल्लाह नहीं होता, है कोई ऐसी जगह, ऐसी तो कोई भी जगह नहीं है। तो यही चीज यहां बताई गई, इसका मफहूमुल मुखालिफा क्या है, रिवर्स मीनिंग क्या है। अल्लाह को वो नौजवान पसंद है, अल्लाह उसको अर्श के साए में रखेगा जो इबादत की तरफ दौड़ता है, अब्द बनता है। वो नौजवान जो अपने टाइम का जिया करता है, नॉनसेंस चीजों में वक्त जाया करता है, अपने आप को मीडिया एडिक्शन में घंटों लगाकर रखता है, घंटों गेम्स खेलता है, आपका क्या ख्याल है अल्लाह की नजर में वो भी बहुत महबूब है? अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर होते हैं? जिसको जितनी नेमतें दी गई उससे उतना सवाल होगा, कहां लगाया अपना वक्त जो अल्लाह ने दिया था? दो नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो अक्सरियत को दी गई, अक्सरियत ने नाशुक्री की, सेहत और वक्त। इंसान इन दो नेमतों की परवाह नहीं करता, इंसान इसी उसमें रहता है, कर लेंगे अल्लाह की इबादत, बन जाएंगे अल्लाह के बंदे, माफ कर देगा अल्लाह, अल्लाह तो है ही इतना गफूर और रहीम, एवं अम्मा आप डराती रहती हैं मुझे। इट्स नॉट लाइक सिंपल थिंग। अल्लाह के अर्श के साए में ऐसे ही नहीं जगह मिलने वाली। ये वो नौजवान है जिसको जगह मिलेगी जिसका दिल और दिमाग अल्लाह की इबादत के अंदर इन्वॉल्व रहता था, मैं दोस्त भी ऐसे बनाऊं जो मुझे अल्लाह से दूर ना करें। अगर दोस्त ऐसे हैं, शैतान क्या कहता है, अपने ऐसे दोस्तों में रहो जो जरा उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं, आखिर तुम इनको दीन नहीं सिखाओगे तो कौन दीन सिखाएगा। आई एम सो सॉरी, दीन सीखने वाले अगर होते तो अपने माँ बाप की जुबान से सीख चुके होते। आप सिर्फ उनके लिए दुआ कीजिए। याद रखिए, इस वक्त आसपास टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा हैं। शैतान ने दुनिया को बहुत हसीन और ग्लैमर वाला बनाकर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मौजूद हैं, अल्लाह ने जहन्नम को नफ्स को पसंद आने वाली चीजों से घेर दिया है।